તારીખ 13-12-1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 421 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 363
गहराई से ग्रहण करने का क्या अर्थ है? गहराई इतने उन्नाण परिणामों में भावों में छिछरापण पण होय छे अने उन्नाण पण होय छे। ऊपर ऊपर से भी भाव आता है और गहराई से भी भाव आता है। ऊपर ऊपर से जो भाव आता है उसमें उतना रस नहीं, गहराई से जो भाव आता है उसमें रस बहुत होता है। खास करके आत्मा के विषय में ऊपर ऊपर से जो भाव आता है उसमें खुद का स्वलक्ष्य नहीं होता, अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, रस नहीं आने का यही कारण है। जिसमें स्वलक्ष्य होता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है, जीव शामिल करता है, तो उसमें रस आने लगता है। और स्वलक्ष्य ज्ञान में भावना विशेष होती है, रस विशेष होता है, रुचि होती है, इसलिए अवधारण करने की क्षमता को प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ से कुछ प्रैक्टिकल साइड, प्रयोग साइड भी यहाँ से चालू होती है। तो दोनों में वो फर्क है। तो ज्ञानियों की शिक्षा है कि तुम आत्मा को गहराई से ग्रहण कर, माने ऊपर ऊपर से नहीं बात समझना है, ऊपर ऊपर से समझ करके छोड़ देना कि चलो बात समझ में आ गई, पहले समझ में ऐसे नहीं आई थी, अभी समझ में आ गई, ऐसे छोड़ देने की बात नहीं है। हाँ, एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है उंडाण, मैंने उंडाण ऐसे उंडा शब्द तो हिंदी में है, जिसे किसी को है प्रश्न रखते हैं इसमें कि कोई विशुद्ध होता है तो उपयोग उंडा 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 उतर जाता है, उसको क्या कहेंगे? अंदर चला जाता है। दूसरा प्रश्न है कि कोई वेदना तीव्र होती है, तीव्र वेदना होती है, तो ऊंडे ऊंडे मने कहीं थाय छे, वेदना को व्यक्त नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ऊंडे 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 बहु ऊंडे ऊंडे लागे छे, एवं किए मारो जीव ऊंडो उतरी जाए छे। बहु तीव्र वेदना थाय छे, मारो जीव ऊंडो उतरी जाए छे, આપણે એમ બોલાય છે હિન્દીમાં, હવે તમારે બોલાતો હોય ખરું, અમારે એમ કે અમારે મારો તો એટલી વેદના થાય છે કે જીવ ઊંડો ઉતરી જાય છે એમાં. તારતમ્યતા બતાવ્યું છે. આત્માના વિષયમાં ઊંડાણથી ગ્રહણ કરવું એટલે આત્મરસ, ઊંડો આત્મરસ આવે એમ કેવું છે. દેખીએ સમાધાન ક્યાં દેતે. नायक स्वभाव विभाव से भिन्न है, उसे मूल में से ग्रहण करने हेतु गहराई से, गहराई में उसके तल में जा. नायक स्वभाव विभाव से भिन्न है, स्पष्ट रूप से एकदम सर्वथा भिन्न है, विभाव से बिल्कुल ही भिन्न है. उस स्वभाव के मूल में से ग्रहण करने हेतु, तो क्या है कि उसमें अपने आप को शामिल नहीं करें तो ये बात आने वाली नहीं है. परलक्षी ज्ञान में आत्मा की बात थर्ड पर्सन हो जाती है, जैसे कोई दूसरे की बात चलती हो, तीसरे की बात चलती हो. इसलिए कभी पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं, उसे ऐसा होता है, उसे ऐसा होता है, तेने आम थाय से, तेने आम थाय से, ई शैली नहीं लेते, पोताने आम थाय से एम लेव, तेने आम लगे एम नहीं, पोताने आम लगे एम लेव, तेने एटले थर्ड पर्सन थी जाए. ખ્યાલ છે, બોલાય નહી, બહુ ખ્યાલ છે. મોટા ભાગે લોકો શાસ્ત્ર વાંચન આપે છે, વિદ્વાન લોકો, એને આમ થઈને, તેને આમ થઈને, એને આમ થઈને, તેને આમ થાય, એવી જ રીતે ચાલતું હોય. પોતાનો સ્વાધ્યાય કરતા એવું ન લાગે. ફુગાનીજી જ્ઞાન દશામાં પત્ર લખે તો એમ લખે કે હમ સબ મુમુક્ષુ, ક્યાં શું લખે, હમ સબ મુમુક્ષુ ગુરુદેવ કી છત્ર છાયા મેં અપને સ્વભાવ મેં જમે રહે, એવી ભાવના હૈ. એવી રીતે પોતાની જાતને અંદર ભેળવે, સામેલ કરે. ગુરુદેવ તો મોટેથી પોતાનો સ્વાધ્યાય જ કરતા હતા એમ કે તો ચાલે, કેમ કે એમને ખ્યાલ હતો કે બહુભાગ લોક આટલા ઊંડાણથી આ વિષયને પકડી શકે એમ નથી. પોતાને આત્મભાવનામાં આવી જવાતું હતું, પછી કોણ પકડશે ને કોણ નહીં પકડે એનો વિકલ્પ નથી રહેતો, એનો વિકલ્પ જ નથી આવતો. ઘણા પ્રશ્ન કરે પણ આવી ઊંચી વાત આમ કે બધાની વચ્ચે કરાય, પણ હવે એ બધાની વચ્ચે ક્યાં દરકાર છે, પોતાને પોતાને પોતાનો સ્વાધ્યાય કરવો છે. પોતાનું કરે કે પારકાનું કરે કોની ચિંતા કરે. નાયક સ્વભાવ વિભાવ સે ભિન્ન હૈ, ઉસે મૂલ મેં સે ગ્રહણ કરને હેતુ गहराई से, गहराई में उसके तल में जा, गहराई में जा उसके तल में जा, ऐसा उपदेश है. स्वभाव है वो वस्तु का मूल स्वरूप है, स्वभाव है वो वस्तु का मूल स्वरूप है। परिणाम में भी परिणाम स्वभाव है, वो परिणाम का स्वरूप है। परिणाम में भी परिणाम स्वभाव होता है, जैसे अनित्यता है वो परिणाम स्वभाव है, शुद्धि अशुद्धि है वो परिणाम स्वभाव है, पलटना वो परिणाम स्वभाव है। हर चीज को, हर बात को उसको स्वभाव से देखने से उसका यथार्थ स्वरूप मालूम पड़ता है। सोना सोना है, चांदी चांदी है, एक पीला है एक सफेद है, लेकिन और भी धातु होती है सफेद पीली, लेकिन चांदी में चांदी पना होता है, सोना में सोना पता पना होता है, ये इसका स्वभाव है, तभी वस्तु को सही समझ में आती है। पीलू एटलू सोनू नहीं, पीला तो पित्तल भी होता है, और वो भी उसको भी पॉलिश करते हैं तो उसका भी लाइट आता है, पीलापन का प्रकाश आता है, जैसे सोने में आता है तेज होता है, ऐसे पित्तल में पित्तल का तेज होता है, सोने में सोने का तेज होता है। नकली बनाते के नहीं, वो भी असल से भी ज्यादा तेज लगाते, फिर भी जो सोना है वो सोना है, जो सोना नहीं है वो सोना नहीं है। क्यों? कि वो टिकने वाली चीज है, वो टिकने वाली चीज नहीं है, नकली चीज। पहचानने वाले उसके स्वभाव को पहचानते हैं, उस धातु के स्वभाव को पहचानते हैं। बाकी तो मिलावट तो उसके मिलता जुलती धातु से ही होती है, लेकिन जो पहचान करते हैं उनको उनका स्वभाव मालूम होता है, ऐसे बात है। ऐसे यहां भी आत्मा को स्वभाव से ग्रहण करने की बात है, क्योंकि ये इसका मूल स्वरूप है। ऐसा मूल स्वरूप को पहचान करके वो पहचान में मैं हूं ऐसी पहचान आती है, थर्ड पर्सन की पहचान नहीं आती है। निर्भ्रम दर्शन की पगडंडी में तीसरा प्रकरण लिखा है हमने, तो उसमें पहचान का विषय लिया है, स्वरूप निश्चय, स्वरूप की पहचान। तो पहला पॉइंट वही लिया है वह, कि जब सिद्ध पद अपना सिद्ध पद पहचाना जाता है तब अपने रूप में पहचाना जाता है, स्वयं के रूप में पहचाना जाता है, मैं हूं ऐसा पहचाना जाता, मैं ऐसा हूं ऐसा पहचाना जाता है, आत्मा पहचाना जाता नहीं है, वह अपना स्वरूप पहचाना जाता है। इस तरह से पहचान होती है, पहचान का मुख्य सिम्टम वही है। પોતાનું રૂપ જ જણાય છે, ઓળખાય છે, પોતા રૂપે ઓળખાય છે, સ્વયં કે રૂપ મેં પહેચાના જાતા એસે પહેચાન આતી હૈ। યહાં દ્રષ્ટાંત દેતે હૈ, જૈસે વૃક્ષ મેં શાખાએ પત્તે હૈ પરંતુ ઉન્હે ન દેખ કર ઉસકે મૂલ મેં જાના ચાહિયે, वैसे ही ऊपर ऊपर से विचार चले तो कार्य नहीं होता, परंतु स्वभाव को ग्रहण करने से होता है। शू कह तो दाखिल आप झाड़ नो डाड़ी पांदड़ा शू एने नहीं जोता, मूल में थे एने जो तो એ વૃક્ષની મજબૂતીનો ખ્યાલ આવશે, જો મૂળને સમજી શકશો તો। મૂળ નહીં સમજાય તો વૃક્ષની મજબૂતી પણ નહીં સમજાય। એ बरसात आती है, तूफान होता है, वृक्ष ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, जिसकी बहुत शाखाएं प्रशाखाएं फैलाव है वो गिर जाते हैं, और नारियल ही नहीं गिरती, नारियल का वृक्ष नहीं गिरता, और वो तो समुद्र से नजदीक होते हैं, ये तो सिटी में होते हैं, वो भी गिर जाते हैं, वो तो समुद्र के सिटी में तो अगल बगल में मकान होते हैं, हवा को रोकता है मकान, वहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं होता, एक और समुद्र दूसरी और सब नारियल ही नारियल, फिर भी नहीं गिरती, क्या कारण है? उसके मूल से देखो, कितने पत्ते हैं, कितनी शाखाएं हैं, वो नहीं देखना है, यानी लांबी शाखा वो डाड़ियों ने थी, ज्यादा पांदड़ा ने थी, तो अपन मूल मजबूत है, कहीं वांधो नहीं आवतो, वैसे ही ऊपर ऊपर से विचार चले तो कार्य नहीं होता, परंतु स्वभाव को ग्रहण करने से होता है। ये बात सुगानी जी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में तीसरे भाग में कई बार दिया है। विचार करने से कार्य नहीं होता, ग्रहण करने से कार्य होता है, वो ऐसे ही लिखते हैं। विचार करना और ग्रहण करना में अंतर क्या है? विचार करने में अब आत्मा का विचार करने अनु अनुवत्ता भाव अनुसरी ने थवु भाव मैंने थवु होना अनुसरण करके होना उसको कहते हैं अनुभव। आत्म स्वभाव को स्वरूप को अनुसरण करके जो अवस्था हुई उसको कहते हैं अनुभव। अनुभव का शब्दार्थ ऐसा है, व्युत्पत्ति अर्थ जिसको बोलते हैं वो इस प्रकार से है। विचार में वो परिस्थिति नहीं है। अनुसरी ने थवु अनुवत्ता भव एम बे शब्द छे अनुभव में, पछी रूढ़िगत रीते एक शब्द थी गयो छे भूभव टू बी थवु होवु अनुसरी ने थवु एनु नाम अनुभव। तमने शू विचार आव्यो अने शू अनुभव थयो एमां फरक छे। ने संसार में आपने अनुभव नी ज किंमत करीए छीए, आप कितने पढ़े लिखे हो वो बात नहीं है, वो नौकरी देते देने में इंटरव्यू लेते ने तो वो क्या है, इंटरव्यू लेने वाला अपने सर्टिफिकेट को दिखाएगा कि मेरी इतनी इतनी डिग्री है, मैं यहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, इंटरव्यू लेने वाला उसको साइड में रखता है, देख लिया ठीक है आप पढ़े वो तो ठीक है, आपको अनुभव कितने साल का है ऐसा बोलेगा, क्या बोलेगा, अनुभव कितने साल का है, क्योंकि तो मेरा 5 साल का है 10 साल का अनुभव, कौन सी कंपनी में कहाँ काम किया है, उस पर से उसने अनुभव कहाँ कैसा किस डिपार्टमेंट में कैसा लिया वो पता लगाया जाता है, और तब वो उसका डिसीजन आता है, निर्णय होता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा या कितना करेगा कैसे करेगा। उसी जगह पे कोई अनुभव ही आएगा कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन मेरे अनुभव का टेस्ट कर लो, मैं आपके वहाँ कोई भी चार्ज लिए बिना 1-2 हजार रोज काम कर लेता हूँ, मेरे अनुभव को देखिए प्रत्यक्ष देखिए, हमको बातें नहीं करना है दिखाना है, तो उसका इम्प्रेशन आएगा, आदमी आत्मविश्वास से बोलता है देख लेते हैं उसके अनुभव को, नहीं पढ़ा लिखा है तो भी उनको स्थान मिलेगा। ये अनुभव की कीमत है, संसार में भी अनुभव ज्ञान की कीमत है, इतनी पढ़ाई की कीमत नहीं है, उतनी डिग्री की कीमत नहीं है, वो बात प्रसिद्ध है कि नहीं है? हाँ, मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 वर्ष में ओछा ओछो अनुभव हे, एनो इंटरव्यू लो छो, बीजा नो अमारे इंटरव्यू पण नथी लेवो, खाली डिग्री वाला नो इंटरव्यू नथी लेवो। हाँ, ओछा ओछो आटलो अनुभव होवो जोईए एम बे, तो पछी अमे वात करवा तैयार छीए। मित्रो, વાત કરવાનો સમય બગાડવો નથી। શાસ્ત્ર મે ભી અનુમાન પ્રમાણ, આગમ પ્રમાણ, તર્ક પ્રમાણ, ન્યાય પ્રમાણ, એસે 4 પ્રમાણ દિયે હૈ, 5મા પ્રમાણ દિયા હૈ અનુભવ પ્રમાણ। લિખતે હૈ શાસ્ત્રકાર કે 5ों प्रमाणों में अनुभव प्रमाण सबसे बलवान है, आगम प्रमाण सबसे बलवान है, ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए कल जो बात आई कि सत्पुरुष की बात शास्त्र से नहीं मिले लेकिन अनुभव से मिलेगी, और उसको तुम स्वीकार करना है। हम आगम से मिलेंगे तो स्वीकार करेगा, वरना नहीं स्वीकार करेंगे। ये बात सही समझदारी की नहीं है, अनुभव को समझो। कहते हैं कि ऊपर ऊपर से विचार चले तो अपना कार्य नहीं होता, सफलता मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, परंतु स्वभाव को ग्रहण करने से होता है। ग्रहण करना मैंने अनुभव करना, स्वभाव का अनुभव करना, स्वयं के रूप में अनुभव करना, तब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। मैं शुद्धात्मा अनादि अनंत हूं, इन विभावों या अपूर्ण अथवा पूर्ण पर्यायों जितना भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो क्षणिक है, विभाव भी क्षणिक है, अधूरी अवस्था मोक्ष मार्ग में है वो भी क्षणिक है, और केवल ज्ञान की पर्याय भी समय समय में क्षणिक है, प्रति समय पर्याय होती है, वहां भी एक पर्याय से दूसरे पर्याय वहां भी भिन्न है। भले इस वैसी की वैसी अवस्था अनंत काल रहती है, लेकिन समय समय पर नई नई होती है। ऐसा मैं क्षणवर्ती पदार्थ में नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा अनादि अनंत हूं। मेरा जो शुद्ध स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वो अनादि अनंत है। ऐसी दृष्टि करके शुद्ध पर्याय को प्रकट करने का कार्य लाना है, ऐसी दृष्टि करके, ऐसा अनुभव करके आत्मा में मलिनता का नाश हो, पवित्रता की उत्पत्ति हो, उसको कहते हैं शुद्ध पर्याय, उसको प्रकट करने का कार्य लाना है। क्यों? कि शुद्धि के साथ सुख होता है, अशुद्धि के साथ दुख होता है। दोष, अशुद्धि और दुख एक सिक्के की दो बाजू है। निर्दोषता, पवित्रता और सुख शांति, ये भी एक सिक्के की दो बाजू है। साथ में ही रहते हैं, कभी अलग नहीं पड़ते, भाव अलग अलग है लेकिन रहते हैं हमेशा साथ में। इसलिए जिसको सुखी होना है उसको निर्दोषता का मार्ग ग्रहण करना होगा। जैन दर्शन माने क्या? कि जो शुद्धता की शुरुआत करा करके पूर्ण शुद्धता को ले जाता है, ऐसा कोई मार्ग है, ऐसा कोई उपाय है, उसी का नाम जैन दर्शन है। कोई संप्रदाय नहीं है, कोई जाति बाति की बात नहीं है, कोई ज्ञाति की बात नहीं है, कोई ग्रुप की बात नहीं है, कोई समूह की बात नहीं है। सभी आत्माएं हैं और कोई भी आत्मा शुद्ध होता है वो जैन है। बनारसी दास जी ने लिखा है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। भीतर में सभी आत्माएं जिन परमात्मा है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। उसको जो देखता है वो अंतर में जैन हो जाता है, चाहे बाहर में वो तिर्यंच हो तो भी जैन है। वर्तमान में स्वयंभू रमण समुद्र में, जो आखिर का समुद्र है जम्बूद्वीप में, जो जलचर प्राणी है संगनी पंचेंद्री, बहुत से पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है। कैसे है? पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है, पांचवा गुण स्थान आता है उसको। वो त्रियंच नहीं है, वो श्रावक है और वो सच्चे जैन है। कैसे हैं? सच्चे जैन है। सिर्फ कुल धर्म से जैन नहीं हुआ जाता, जैन होना पड़ता है। जैसे कोई साधु पैदा नहीं होता, जन्म हो लेने के बाद साधु होना होता है, वैसे वर्तमान में कोई ज्ञानी की तीर्थंकर की बात छोड़ो, जो ज्ञान लेके आते हैं, लेकिन यहाँ तो होना पड़ता है। ज्ञानी यानी जैन होना पड़ता है, ज्ञानी जन्मता नहीं, ज्ञानी होता है। जैन जन्मता नहीं, जैन होता है, ऐसा कहते थे। हम तो शुरू से ऐसा कहते थे, अन्य कुल में थे तो ऐसे कहते थे, जैन तो होना पड़ता है। जैन जैन सब जैन को देख लेते, देखो जैन जन्मते नहीं है, फिर जन्म सब जैन दिखने में नहीं आते, तो जैन है ऐसा दिखने में नहीं आते। क्या कहा? कि मैं शुद्ध अनादि अनंत शुद्ध आत्मा हूं, एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं हूं, भले ही पूर्ण शुद्ध पर्याय हो उतना मैं नहीं हूं, क्योंकि वो तो एक समय में खत्म हो जाती है, मैं खत्म नहीं होता। ऐसी दृष्टि करके यानी ऐसी श्रद्धा करके, ऐसा अनुभव करके पर्याय में शुद्धता प्रकट करने का कार्य लाना है। कार्य नहीं आना आए तो दृष्टि यथार्थ नहीं है। यथार्थ दृष्टि में शुद्धता होती ही है। सुगानी जी पत्र में लिखते हैं, बहुत अच्छी शैली से एक वचन निकल गया है, कि मैं त्रिकाल ध्रुव शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि में पर्याय की शुद्धता सहज स्वभाव है, ये परिणाम स्वभाव है। परिणाम में दृष्टि स्वभाव पर जाए तो पर्याय में शुद्धता होना वो पर्याय का सहज स्वभाव है। शुद्धता करनी नहीं पड़ती, अशुद्धता धोनी नहीं पड़ती, सिर्फ दृष्टि करो, ग्रहण करो, दृष्टि में से शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करो। तो ग्रहण करना वो भी पर्याय, और एक पर्याय का पर्याय स्वभाव बहुत से प्रकार के हैं। इसमें एक प्रकार ऐसा है कि वो जिसको पर्याय ग्रहण करती है वैसी तदाकार हो जाती है, तद्रूप हो जाती है। जैसे कोई कड़वी चीज खाई तो कड़वा 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 में हो गया, पर्याय का स्वभाव है। जिसको ग्रहण करता है उस रूप हो जाती है, वो पर्याय स्वभाव है। तो शुद्धात्मा को ग्रहण करती है जो पर्याय, उसमें शुद्धता होना सहज स्वभाव है। पर्याय में शुद्धता होना सहज स्वभाव है। स्वभाव की दृष्टि में पर्याय की शुद्धता सहज स्वभाव है, करना नहीं पड़ता और करने का बोझा नहीं रहता, आकुलता नहीं होती, सहज हो ही जाता है। इसलिए अगर कार्य नहीं आया, शुद्धता का कार्य नहीं आए, तो समझ लेना कि दृष्टि यथार्थ नहीं है, दृष्टि उल्टी पड़ी। दृष्टि माने ये था कि गहराई से ग्रहण करने का अर्थ क्या है। स्वभाव से, मूल स्वरूप से ग्रहण करो, आत्मा को मूल स्वरूप से अनुभव करो, ग्रहण करो। ऊपर ऊपर से इसका विचार मत करो, ये कहने का तात्पर्य है। गहराई से ग्रहण करने का तात्पर्य वो है कि मात्र विचार में वस्तु को नहीं रखो और विचार करते करते थक जाओगे। क्या होगा? विचार करते करते थक जाओगे, विचार अपना विषय बदल देगा, आत्मा को छोड़ देगा। अनुभव एक ऐसी चीज है जो शादी अनंत टिक सकती है। शादी अनंत काल रहते हैं अनुभवी जीव, अनुभव में, क्योंकि वहां से निकलना ही अच्छा नहीं लगता, गमता नहीं है। सुख है, शांति है, आनंद है, क्यों निकले? अमृत जैसा स्वाद आता है, अनुभव आता है, उसको क्यों छोड़ेंगे? कोई छोड़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए अनंत काल वहां राज आता है। और आकुलता तो छूटती है, आकुलता तो स्वभाव विरुद्ध है, इसलिए उसमें कोई टिक सकते नहीं, टिक पाएंगे नहीं, ये सहज हो जाएगा। प्रैक्टिकल साइड को देखेंगे थोड़ा, अनुभव तो स्वरूप का बाद में आता है, पहले पहचान होती है। और परिचय बिना पहचान होती है। पहचान का कारण क्या? परिचय है। अब देखो, संसार में भी जिसको जिस चीज का परिचय ज्यादा है उस चीज की पहचान ज्यादा है कि नहीं? अब वहां समझ में आता है कि ज्ञान की गहराई क्या है। हीरा को देख करके सब हीरा ही बोलेंगे, लेकिन नकली असली तो जोहरी जानता है। आम आदमी, आम समाज उसको पहचानते नहीं। आम समाज खरीदते हैं जरूर, पहचानते नहीं। तो खरीद किया क्यों किया? कि हीरा समझ करके खरीद किया। फिर भी समझ एक बात है, पहचान दूसरी बात है। सोने के जेवर खरीदते हैं, चांदी के जेवर खरीदते हैं, हम समझ खरीदते हैं, सब जानते हैं ये सोना है, ये चांदी है। पहचानते कौन है? जो इसके तजज्ञ है वो ही पहचानते हैं। इसके पास अनुभव ज्ञान है, क्या है? अनुभव ज्ञान है। ये अनुभव ज्ञान से समझना चाहिए कि गहराई क्या चीज है। ऊपर ऊपर समझ क्या चीज है? समझ है वो ऊपर ऊपर की बात है, समझ है वो ऊपर ऊपर की बात है, अनुभव है वो गहराई वाला ज्ञान है। दोनों ज्ञान है, लेकिन एक ऊपर ऊपर का है, एक गहराई वाला है। आत्मा के विषय में भी शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझ आती है, इसलिए ज्ञान हो जाता है, सो बात नहीं है। ज्ञान तो अनुभव ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, क्योंकि आत्मा अनुभव अनुभवनीय पदार्थ है। जैसे मिठाई स्वादनीय पदार्थ है, देखने से पता नहीं चलता। काला जामुन होता है मिठाई में, होता है कि नहीं? गुलाब जामुन होते हैं, उसमें काले भी होते हैं, तो काले हैं इसलिए अच्छे नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है। और कलर डाल करके अच्छे शो वाली मिठाई बना लेते हैं इसलिए वो मिठाई अच्छी होती है, ऐसी बात तो नहीं होती। खाने से ही पता चलता है, स्वाद लेने से पता। ठीक है, फिर भी सुनना, पढ़ना, विचार करना एक स्तर है ज्ञान का, और अनुभव होना दूसरा स्तर है ज्ञान का। दोनों का स्तर तो अलग अलग है कि नहीं है? एक दूसरी बात ले लें, आजकल ये पाक शास्त्र आता है रसोई बनाने का, पढ़ते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ते हैं, तो क्या वो रसोई बनाने को जानते हैं क्या? पढ़ाई होगी, पीएचडी हो गया, चलो ये सब्जेक्ट में कोई पीएचडी हो गया, और कोई अनपढ़ आदमी रसोईया है, हजारों आदमियों की रसोई बनाता है, हा? दोनों को रसोई का बनाने का ज्ञान है, चलो प्रैक्टिकल ज्ञान वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। हम व्यापारी लोग हैं, हमारे बच्चे को हम बीकॉम एमकॉम सब कुछ करा लेते हैं, कॉमर्शियल लाइन का डिग्री हो गया ना, और व्यापार भी कॉमर्शियल लाइन है, तो उसको अपने ऑफिस में अपनी गद्दी पे बिठाते हैं, चलो तुम तुम्हारा पढ़ाई पूरा हो गया, हम काम सौंपेंगे नहीं उनको, कंट्रोल पूरा नहीं देंगे। पढ़े तो तुम हो तो कुछ अनुभव ज्ञान भी लो। वही तो प्रैक्टिकल तो कराते हैं, ये तो प्रैक्टिकल तो कराते हैं कि देखो अनुभव करो आपको क्या होता है। आप रोजाना खाते हैं, आपको मालूम नहीं है कि हमारा उल्टा प्रैक्टिकल कैसे चलता है। कि हम स्वाद में कितना रस लेते हैं, उल्टा प्रैक्टिकल है। अब बिना स्वाद वाली वस्तु खा करके देखो प्रैक्टिकल ज्ञान में कि हमारा मुंह कितना चला तो हमको कैसा लगा, हमारा मुंह का नाप आएगा, प्रैक्टिकल ज्ञान से देखा जाएगा। दूसरा दृष्टांत लेते हैं कि हम हमारे परिवार में अपनत्व करते हैं, ये मेरी लड़की है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, माँ बाप भाई बहन, अनेक प्रकार के परिवार के समझ सब में अपनत्व करते हैं। उल्टा प्रयोग हमारा चलता है, हम प्रयोग के दृष्टिकोण से वो बात को समझते नहीं ना, तो मालूम नहीं होता है कि हमारा मुंह प्रैक्टिकली कितना काम करता है, वो भी उल्टा एक प्रयोग है। जब प्रयोग को समझना है, अनुभव ज्ञान, प्रयोग से अनुभव ज्ञान होता है क्या? प्रयोग पद्धति अनुभव पद्धति है, अनुभव पद्धति है वो प्रयोग पद्धति है। तो हमारा उल्टा प्रयोग को हम अगर समझने का प्रयास करेंगे तो उल्टा प्रयोग कैसे किया जाए वो भी हमारी समझ में आएगा, क्योंकि प्रयोग तो हम करते ही है, उल्टा अनुभव करते हैं कि मेरापना है, मैं अपनापन करता हूं। कोई ऐसा थोड़ी बोलता है, मैं समझता हूं कि ये मेरा भाई है। समझता है मतलब क्या? मैं अनुभव करता हूं कि ये मेरा भाई है। समझता हूं ऐसा कोई बोलता है कि मैं समझता हूं मेरा भाई है? तो अनुभव करता है, देखते ही उसको अनुभव होता है कि मेरा है, देखने से अनुभव होता है, हैं? हाँ, तो अनुभव में क्या है? फीलिंग होता है, विचार में फीलिंग नहीं होता। ऐसे आत्मा है, इसका विचार में अपनत्व का फीलिंग नहीं होता तो वो अनुभव ज्ञान नहीं है। अपनत्व का फीलिंग होता है तो अनुभव ज्ञान है। इसलिए मुमुक्षुता में फीलिंग लाइन पे, अनुभव लाइन पे लिया जाता है कि वेदना में आओ, ये फीलिंग है, वेदना है वो फीलिंग है। फीलिंग पद्धति से, अनुभव पद्धति से प्रवेश किया कराया जाता है। ठीक है, हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि अगर हमको सम्यक्त्व होकर के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी तो अनंत जन्म मरण करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। समझते हैं, लेकिन अगर डर हुआ तो हमको फीलिंग आई। भाव भ्रमण का डर होने से उसको फीलिंग आती है। समझते तो है, अगर डर नहीं हुआ तो क्या समझे? कि कुछ नहीं समझे। समझे कुछ? कुछ नहीं समझे। डर हुआ तो बराबर समझे, यथार्थ समझे, वेदना आएगी इसकी, ऐसी बात। ये मूल्यांकन की चीज है। जो बच्चा है पहली श्रेणी में पढ़ता है वो भी इसको 100 आंक का समझ में आता है, उसको 100 रुपये का नोट दिखाओ और एक कागज पर 100 रुपया लिखो, 100 रुपये, 100 रुपये, नोट में भी लिखा है 100 रुपये। बच्चा पढ़ने को सीख गया है, क्या दिखाओ, क्या लिखा है? 100 रुपये। इधर क्या लिखा है? 100 रुपये। क्या अंतर है वो मालूम नहीं है। क्यों? उसको मूल्यांकन नहीं है कि नोट क्या चीज होती है और कागज क्या चीज होती है। जैसे शास्त्र पढ़े उसमें आता है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत सुख, और सुख के पीछे हम दौड़ते हैं हमेशा। फिर भी अगर हमको फीलिंग नहीं आए, अरे हमारे आत्मा में ऐसा, इसका मूल्यांकन नहीं आए, तो वजन जाएगा कहां से? आत्मा पर वजन नहीं जाएगा। क्या है कि फीलिंग है वो अनुभव है, वो होना चाहिए, मस्ट होना ही चाहिए, तभी ज्ञान सच्चा है। बाकी कोरा ज्ञान है, फालतू का शुष्क ज्ञान है, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई सुख शांति लाने की ताकत नहीं है वो ज्ञान में। तो सुख शांति तो अनुभव की चीज है, वो अनुभव से आती है, विचार से नहीं आती। ये कहने का अभिप्राय है, सिर्फ ऊपर ऊपर से विचार चले तो कार्य नहीं होता। ठीक है, समझो, लेकिन समझ पूर्वक अनुभव का प्रयास करके अनुभव में आ जाओ। समझे ही नहीं तो अनुभव में आने का सवाल नहीं है, लेकिन समझना एक स्तर है, अनुभव होना दूसरा स्तर है। समझ के स्तर में बहुत से लोग आते हैं, पर लक्ष्य ज्ञान तो आना निश्चित खुला है और उसमें ताकत भी है समझने की, लेकिन वो कार्य से नहीं होता, कार्य अनुभव से होता है और अनुभव में आना चाहिए। अनुभव पद्धति से हमें शुरुआत करनी है, अनुभव पद्धति से हमें आगे बढ़ना है और स्वानुभव करना है। ऐसी पूरी लिंक ऐसी बैठनी चाहिए। यहाँ तक अग्नि पंचेंद्रिय जीव ने विचार शक्ति तो प्राप्त छेज, ठीक विचार ज्ञान में आत्मा ने समझवो, ऊपर ऊपर थी चालतू ज्ञान छे, તેનાથી આત્મહિત સધાતું નથી, પરંતુ આત્માને લક્ષણ છે, વેદન છે અને સ્વભાવથી ગ્રહણ કરવાથી પોતા રૂપે ગ્રહણ કરવાથી આત્મહિત સધાય છે, એમ કહેવાનો અહીંયા આશય